ಪರಿವ್ರಜಾಖಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ವಿಷ್ಣು ಶ್ರೀಮಲೇಶ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌತಾದ ಕೀ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ಕೀ ಓ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸನ ಗೋವಿಂದ ಕೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿನಾ ಶ್ಯಾಮಕುಂಡ ರಾಧಾ ಕುಂಡಗಿರಿ ಗೋವರ್ಧನ ಕೀ ಸಮವೇದ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ तो कल और आज हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवद गीता क्या है। भगवद गीता बहुपठित परिपूर्ण आस्तिक विज्ञान है जो स्वयं भगवान ने बताया है, जिसका सार रूप में गीता महात्म्य में दिया गया है। और तो भगवद्गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को इस महान दर्शन शास्त्र को समझा रहे हैं। और ये वार्तालाप बाद में संजय द्वारा दोहराया गया धृतराष्ट्र के सामने। फिर महाभारत में ये वैशंपायन मुनि जन्मेजय को कहते हैं विश्व पर्व में 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक का ये 18 अध्याय में ये भगवद गीता का वर्णन आता है महाभारत में। इसमें 700 श्लोक है। तो महाभारत को पंचम वेद भी कहा गया, इसलिए ये भगवद गीता है पंचम वेद महाभारत का अंग है। और भगवद्गीता गीतोपनिषद नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि ये सभी उपनिषदों के आधार पर, उपनिषदों के जो सिद्धांत है उसके आधार पर है। तो सभी वेद शास्त्रों का सार उपनिषद है। और उन सभी उपनिषदों में महत्वपूर्ण उपनिषद है भगवद्गीता। और भगवद्गीता जो वेदों में जो कुछ भी चीज वर्णन किए गए हैं वो सार रूप में प्रस्तुत करता है। हम सभी लोगों को वेद उपनिषदों को पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये भगवद्गीता पढ़ लिया तो काफ़ी है। कभी कभी लोग पूछते हैं ना, जब पुस्तक वितरण में जाते हैं तो मैं को चार वेद पढ़ना चाहता हूँ, हम मूल वेद पढ़ना चाहता हूँ, ऐसे लोग बोलते हैं। तो उनको पता नहीं वो क्या पूछ रहे करके, क्योंकि पहले वेदों को पढ़ने से पहले 6 वेदांग है, तो उनको पढ़ना पड़ता है। शिक्षा, छंद, निरुक्ति, व्याकरण, कल्प और ज्योतिष, ये सभी 6 वेदांग है। इनको अध्ययन करते करते जीवन लग जाते हैं, तो फिर जाके वेदों को उनको पढ़ना पड़ता है, तभी वेदों को समझ सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में लिखते हैं, जो वेदों के शास्त्रज्ञ है उनमें से श्रेष्ठ है वैष्णव, और सभी वैष्णव शास्त्रज्ञों में से श्रेष्ठ है जीव गोस्वामी। और जीव गोस्वामी अपने तत्व संदर्भ में लिखते हैं, मैं जो वेद है पूर्व जो मूल वेद पुराण है वो मैं अध्ययन नहीं किया हूं, ऐसे कहते हैं। फिर वो कहाँ से उनको ये सभी वेदों से उन्होंने उल्लेख किया, पुराणों से जो उपनिषदों से जो उल्लेख किया, वेदांत सूत्र से अपने संदर्भों में उन्होंने उल्लेख किया, कहाँ से आए वो ज्ञान उनको? वो बताते हैं मैं मध्वाचार्य के टीकाओं से मैं सभी ये वेदों का जो मूल श्लोक है वो लिया हूँ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये सभी पढ़ लिया है। तो ऐसे महान जो कांड पंडित है पूरा इतिहास में, तो वैदिक इतिहास में ही जो प्रकांड पंडित है, वास्तव में देखेंगे तो जीव गोस्वामी वेद व्यास से भी ज्यादा उन्होंने लिखा हुआ, 400,000 श्लोक उन्होंने लिखा, वो वेद व्यास से भी ज्यादा है। ऐसे प्रकांड पंडित भी वो मूल रोल नहीं पढ़ा तो वो पढ़ सकते थे, लेकिन वो बताते हैं कि मैंने पढ़ने का मैं जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मैं मध्वाचार्य जी से उनकी टीकाओं से ये सब लिया है। तो लोग चार वेद पढ़ना सीखते ये त्रिवेदी द्विवेदी वो कुछ नहीं। तो वो हम लोग अच्छी तरह से भगवद गीता पढ़ लिया तो बहुत कुछ है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी श्रील प्रभुपाद जी को उनको एक शिष्य ने खत लिखा, वो दक्षिण भारत में होकर भ्रमण करके प्रचार कर रहे थे। तो उन्होंने खत लिखा कि दक्षिण भारत में बहुत सा बड़े बड़े पंडित है, शास्त्रज्ञ है, उनको कैसे सामना करूंगा मैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले भगवदगीता का 30 जो श्लोक है वो याद करो, तुम कोई भी पंडित को सामना कर सकते हो। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कौन सा 3 श्लोक है, 30 श्लोक है, लेकिन हम चाहते हैं आपको 200 कम से कम 250 श्लोक अध्ययन करें, इस महीने में याद करें, चाहते हैं ऐसे। तो ये सभी वेद शास्त्रों का, सभी उपनिषदों का क्या है, ये सार है, इसलिए इसको गीतोपनिषद महत्वपूर्ण उपनिषद। और उसके बाद में हम लोग चर्चा कर रहे थे हमारे जीवन में गीता का क्या महत्व है, तो हम 10 पॉइंट इसमें चर्चा किए ना, कि जो लोग गीता पढ़ते नहीं हैं, श्रवण करते नहीं, वो पशु के समान है, विकल पशु है, क्योंकि वेद शास्त्रों को मनुष्यों के लिए दिया गया था। तो भगवद गीता सभी वेद शास्त्रों का सार है, इसलिए जो भगवद गीता अध्ययन नहीं करते वो श्रवण नहीं करते हैं, वो पशुओं के समान है, वो पहला चीज है। तो दूसरा चीज हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे हमारे जीवन को हम लोग यशस्वी बनाएं, या उसको कैसे हमें बिताना चाहिए, वो भगवद गीता में बताया गया। हमारे जीवन में जो कुछ भी वस्तुएं हैं, हमारे अंदर जो कुछ भी गुण है, उसको कैसे सदुपयोग करना चाहिए, उसके बारे में गीता हमें ज्ञान देता है। तो और दूसरा तीसरा चीज हम लोग चर्चा कर रहे थे, कैसे हमारे चेतना को शुद्ध करना चाहिए, वो गीता में वर्णन आता है। गीता में अलग अलग गुणों के बारे में वर्णन, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, वो चेतना के ऊपर ये सभी 3 गुण प्रभावित करते हैं। तो इसलिए हमें कैसे अपने आत्मा को शुद्ध करें और भगवान के नाम वापिस लौट जाए, वो भगवदगीता में वर्णन आता है। और चौथा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवदगीता में परम सत्य के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान है, ऐसे परम सत्य भगवान है, तो भगवान कौन है, भगवान कृष्ण है, तो उसके बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से ज्ञान है। मैं उदाहरण दे रहा था अभी हाल ही में भारत में ऐसे वो विवाद हो गया था, साईं बाबा को पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब मैं यहाँ पर भोपाल में उतर गया, एक व्यक्ति आके मुझे तुरंत पूछने लगा, आपके अनुसार क्या है? तो मैंने बताया लोग भगवान के बारे में बात करते हैं, लेकिन भगवान भगवत्ता क्या है उनको पता नहीं है। व्हाट यू मीन बाय सुप्रीम नेचुरल, भगवान क्या है, भगवान कौन है, जानने से पहले भगवत्ता क्या है वो जानना चाहिए। तो ये सब चीज भगवत ना भगवदगीता में अच्छी तरह से वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, वो कैसे भगवान है उनके बारे में सभी सब कुछ जानकारी है। तो और हम लोग उसके चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग अवतार आते हैं जगत में, कभी कभी तथाकथित अवतार भी इस जगत में प्रकट होते हैं, तो कैसे हमें अवतार को जानना चाहिए वो भी भगवद गीता में, सही जो अवतार कौन है उसके बारे में भी भगवद गीता में बातें आता है। फिर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवद गीता में आत्मा इस जगत में इस शरीर में कैसे स्थित है, कैसे वो देहांतर प्राप्त करता है, ये जानना भी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारा अगला जीवन क्या होगा उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। हम लोग ऐसे जीवन बिता रहे अगले जीवन में, कोई निम्न योनि में जन्म लिया तो बहुत कष्टदायक होगा, इसलिए वो भी भगवद गीता में वर्णन आता है उसका ज्ञान। और हम लोग कैसे अंत में भगवान को स्मरण करके भगवद्धाम लौट के जा सकते हैं, इसके लिए सुविधा बहुत ही सुविधाजनक मार्ग है गीता को श्रवण करना, तो इसलिए भी भगवद्गीता मार्गो को हमारे जीवन में। और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवद्गीता में भगवान कैसे भौतिक तत्वों से भरे हैं, वो दिव्य है, उनका शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिली है। और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवद्गीता को श्रवण करना ये भक्ति का, वैदिक साधन भक्ति का एक प्रमुख अंग है, और भक्ति आरंभ होता है गीता को श्रवण करने से या गीता को पालन करने से, गीता में श्रद्धा रुचि जागृत करने से, तो ये सब चीज और महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग ये महत्व को जानने के बाद हमें पता होना चाहिए कि भगवद गीता समझने के लिए कौन योग्य है, इसके बारे में हमें समझना चाहिए। उससे पहले कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है उसके बारे में हमें जानना चाहिए, तो वो भी भगवद गीता में भगवान वर्णन करते हैं। विशेष करके चार लोग है जो भगवद गीता को समझने में योग्य नहीं है, वो भगवद गीता उनके लिए नहीं है, तीसरा भगवद गीता किसके लिए नहीं है, भगवद गीता है तीसरा पॉइंट। चार लोगों के लिए ये नहीं है। पहला है जो तपस्वी नहीं है, धार्मिक नियमों का जो तपस्या में है, धार्मिक नियमों को पालन नहीं करते हैं, उनके लिए ये नहीं है। वो लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। दूसरा है वो अभक्त, भगवान के भक्त नहीं है। पहला है जो धार्मिक नियमों को पालन नहीं करते या तपस्या नहीं करते थे, दूसरा है जो भगवान के भक्त नहीं है, उनके लिए भी नहीं है। और तीसरा है जो सिद्ध शुद्ध भक्तों का सेवा नहीं करते, वैष्णव सेवा नहीं करते या विशेष करके शुद्ध भक्तों का सेवा नहीं करते, और चौथा है जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवद गीता इनके लिए नहीं। तो पहला वर्ग क्या है, न तपस्या या भगवान बोल रहे थे, तो अठारहवें अध्याय के 67वां श्लोक बोले, वहां पर भगवान बोल रहे इनके लिए भगवत गीता नहीं बोलना चाहिए या कौन इसको समझेंगे? ये चार वर्गों के बारे में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। इदं ते न तपस्ताय न भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाक्षं न च माव्यो विश्रूयति श्रूयति न च। ये चार लोगों के लिए ये भगवद्गीता नहीं है। पहला न ना तपस्ताय, सो सबके पास है ना भगवद्गीता, जो नए पढ़ाए हैं सबके पास है भगवद्गीता, जिनके पास नहीं है वो ले लीजिए। और गुरुदास को स्पॉन्सर करें। सो ना तपस्ताय जो तपस्या नहीं करते, जो तपस्वी नहीं है, इसका अर्थ क्या है तपस्वी नहीं है? अपर में श्री प्रभुपाद देखिए, पर्सन्स हु आर नॉट अंडर वन ऑस्टेरिटी ऑफ रिलीजियस प्रोसेस, जो धार्मिक धर्म के जो तपस्याएं हैं उसको पालन नहीं करते वो लोग इसको समझ नहीं सकते। किसी को पता है चार धर्म का जो चार स्तंभ क्या क्या है? किसको पता है धर्म का चार स्तंभ क्या क्या है? दया, शौच और सत्य और तपस्या। ये चार स्तंभ है धर्म के। और ये चार स्तंभ कैसे नाश होते हैं किसी को पता है? दया कैसे नाश होता है? मांसाहार करने से नाश हो जाता है। और सत्यता कैसे? जुआ खेलने से। और तपस्या कैसे नष्ट होती है? नशा पान करने से। और चौथा है शौच, और स्त्री संग करने से शौच का नाश हो जाता है। तो इनको जो पालन नहीं करते हैं उनके लिए भगवद गीता, तो ये पालन करना थोड़ा तकलीफ है ना, इसलिए तपस्या का अर्थ क्या है? जो ऊंचे उद्देश्य के लिए शारीरिक और मानसिक तकलीफ लेना उसको तपस्या कहते हैं। तो इसको धार्मिक तपस्या कहते हैं। यहाँ पर वैसे लोग बहुत सारे तकलीफ ले रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, वो भी तकलीफ है शरीर के लिए और मन के लिए। वैसे लोग बहुत सारे तपस्या करते हैं, लेकिन धार्मिक तपस्या यहाँ पर बताया है। श्री प्रभुपाद तात्पर्य आरंभ करते हैं ना, जिन लोग ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए हैं, तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए हैं उनके लिए तो धार्मिक तपस्या, इसका अर्थ ये चार नियमों को पालन करना चाहिए उनके लिए। हाँ ये नहीं है तो वो लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज ये चार नियम मतलब कम से कम मनुष्य के स्तर पर आने के लिए ये चार नियम को पालन करना चाहिए या धार्मिक जीवन इससे आरंभ होता है, तो इसलिए इनको करना चाहिए तभी ये भगवद्गीता को समझ सकते हैं। और दूसरा ना भक्ताय कदाचन, तो जो भक्ति भगवान को भक्ति नहीं करते उनके लिए भी ये भगवद्गीता नहीं। इसके बारे में और हम लोग और चर्चा करेंगे किनके लिए भगवद्गीता है, अब जाकर इसको विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। और नच शुश्रूषवे वाक्षम, जो शुद्ध भक्तों का वैष्णवों का सेवा नहीं करते हैं तो उनके लिए भी भगवद्गीता नहीं है। तो वैष्णवों का सेवा नहीं करना या उनके सेवा नहीं करना, इसका शुद्ध भक्त का सेवा नहीं करना इसका अर्थ है तो उनके प्रति ईर्ष्या करना। तो विशेष करके शुश्रूषा शब्द का अर्थ है कि उन उनको निजी निजी बहुत तुच्छ सा तुच्छ सेवा करना। तो हालांकि वैष्णव सेवा तुच्छ नहीं है, लेकिन सामान्य शब्दों में हम लोग ऐसे कहते हैं। तो इसका अर्थ है जब शुद्ध भक्त स्नान करना चाहते हैं तो उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, वो विश्रांति लेना चाहते हैं तो उनको कुछ वो विश्रांति के लिए व्यवस्था करना, उनके लिए प्रसाद बनाना, उनका प्रसाद सेवा करना। तो ये सभी क्या है, तो शुश्रूषा कहते हैं। तो रूप गोस्वामी को कहते हैं ना, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा प्रियेत दीक्षास्ति ते प्रणति विश्व भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यमन्य निंदादि शून्य रदमीक्षित संगलत्वा। इस श्लोक में तीन तरह के भक्तों को वर्णन करते हैं, कनिष्ठ, मध्यमा और उत्तम। उत्तम भागवत को शुश्रूषया, उनको ऐसे सेवा करना चाहिए और उनका संग प्राप्त करना चाहिए। तो ऐसे शुश्रूषया वाच्य न च माम योग्य सूयंती। सूयति जो भगवान को ईर्ष्या करते हैं उनके लिए भी भगवान की भगवद्गीता नहीं है। तो कोई जानते हैं कौन सा श्लोक है भगवद्गीता में ऐसे कहा गया है, मैं आपको भगवद्गीता इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरा ईर्ष्या नहीं करते हैं। वहाँ पर ईर्ष्या के बारे में नहीं बताया, वहाँ पर भक्ति के बारे में बताया। वो हम लोग आगे चलते हैं। इदम ते द्विजतम प्रवक्षाम सूर्य भाई, नवे अध्याय का पहला श्लोक में ऐसे बताया, जो आप मुझे ईर्ष्या नहीं करते। इसका अर्थ क्या है, प्रभुपाद वहाँ पर तात्पर्य में कहते हैं, इसका अर्थ है भगवान कृष्ण है, वो लोग ऐसे भगवान कृष्ण ही क्यों भगवान नहीं, भगवान है साई बाबा क्यों नहीं, ऐसे जो ईर्ष्या करते हैं उनके लिए ये भगवद्गीता नहीं। तो भगवान के प्रति उनको ईर्ष्या नहीं है, तो उनके लिए ये भगवद्गीता है। तो ईर्ष्या लोगों को ये भगवद्गीता नहीं बताना चाहिए। और या वो लोग इसको कभी समझेंगे नहीं। तो इसके तात्पर्य कोई पढ़ेंगे, अभी तात्पर्य 67।
जिन लोगों ने तपस्या में आदि अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्ति की शुरुआत नहीं की, तथा विशेषतया जिन्होंने कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं या जो कृष्ण की महानता से देख सकते हैं,
लोग जो कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, तो ये भी एक बड़ा जो मूर्ख लोगों ने विवाद किया है कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, तो एक ऐतिहासिक पुरुष थे, ऐसे लोग अब चले वो ईर्ष्यालु लोग हैं भगवान के प्रति, वो ईर्ष्या करते हैं। और तो बाद में वाक्य से पढ़े दो तीन वाक्य छोड़कर वो शुरू होता ना, वास्तव में कामी लोग भगवद्गीता को वहां से पढ़े, दो तीन लाइन छोड़कर वास्तव में कामी लोग किसी को
कामी लोग भगवद्गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते।
कामी मतलब क्या है, जो तपस्या नहीं करते, ना तपस्या या
यदि कोई कामी ना भी हो और वैदिक शास्त्र द्वारा अधिष्ट नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता।
हालांकि एक व्यक्ति तपस्वी हो लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं है तो वो भगवद्गीता समझ नहीं सकते।
और यदि वह अपने को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यक्रमों में रत नहीं रहता, तब भी वे कृष्ण को नहीं समझ पाता।
कोई कोई ऐसे लोग भी रहते हैं ना, वो बोलते हैं मैं भी भगवान का भक्त हूँ, ऐसे बोलते हैं। क्या वो भगवान के भक्त कृष्ण भावना अमृत भक्ति ना में जुड़े हैं, या वो भक्ति सेवा में कर रहे हैं शुश्रूषा, भक्तों का संग ले रहे हैं, भक्तों का सेवा कर रहे हैं, या यू नो कृष्ण भक्ति के अलग अलग कार्यकलापों में लगे हैं क्या, ऐसे उनको देखना चाहिए।
ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष करते हैं क्योंकि उन्होंने भगवद्गीता में कहा है कि वे परम हैं और कोई भक्त उनसे बढ़कर ना उनके समान है,
तो वो लोग द्वेष करते हैं। कभी कभी लोग ऐसे ही बोलते हैं भगवान कृष्ण कितना अहंकारी है, वो अपने आप के अपने बारे में ही बोल रहे हैं, मैं ही परम हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन ये मूर्ख लोग ये भगवद्गीता से समझते नहीं है कि भगवान कृष्ण नम्र भी है, वो अर्जुन के साथी बने हैं ना, भगवद्गीता में ही हम लोग देखते हैं ना उसको। हाँ, अर्जुन बता रहे सेनयोर उपयोर मध्य रथम स्थापय में अच्छुता है, मेरे रथ को लेकर दोनों सेना के बीच में खड़ा कीजिए, ऐसे अर्जुन बता रहे, उनको आदेश दे रहे हैं। भगवान हमारे लिए बता रहे अपने अपने बारे में, हमारे हम सब के लिए जानना जरूरी है भगवान को, इसके लिए वो बता रहे। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अहंकार से बता रहे, वो ऐसे लोग ईर्ष्या करते हैं भगवान को, वो क्यों भगवान वो है। विशेष करके प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में प्रचार कर रहे थे, वो सीधा प्रस्तुत किया उन्होंने भगवान कृष्ण है। पाश्चात्य देश में लोगों को पता नहीं भगवान के बारे में, वो सिर्फ गॉड गॉड बोलते हैं, गॉड 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 बोलते हैं, उनको पता नहीं है कौन भगवान है करके। तो प्रभुपाद जी जाकर उनको प्रस्तुत किए भगवान कृष्ण, कोई बताया ना उनको क्यों कृष्ण भावनामृत आंदोलन, भगवत भावनामृत आंदोलन क्यों नहीं, वो ऐसे लिखिए, ऐसे बताइए आप, ऐसे आपका संस्था का नाम दीजिए। प्रभुपाद जी बोले क्यों भगवान कृष्ण नहीं, भगवान मतलब कृष्ण है, क्यों नहीं भगवान कृष्ण भावनामृत आंदोलन, क्योंकि भगवान का अर्थ भगवान क्या कौन है कृष्ण। तो पाश्चात्य देश में सीधा उन्होंने प्रस्तुत किया और लोग स्वीकार किए, क्योंकि वो लोग क्या थे ईर्ष्यालु नहीं थे। तो भारत में क्योंकि प्रभुपाद जी को कितने सारे कष्ट सामने करना पड़े प्रचार में, क्योंकि जब भी आप बोलेंगे भगवान कृष्ण है करके, वो बोलेंगे ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसे बोलेंगे। तो ये ईर्ष्या है भगवान के प्रति। तो ये चार लोगों कभी भगवद्गीता नहीं समझेंगे। खड़ी और
ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं, ऐसे लोगों को भगवद्गीता नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते।
बस बस बस। तो एक और बहुत बड़े श्रद्धाविहीन लोग,
श्रद्धाविहीन लोग भगवद्गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे।
बस तो ये चार वर्गों को समझ नहीं पाते। श्रील प्रभुपाद इसके बारे में और भी अन्य जगह वर्णन करते हैं। कि आधुनिक जमाने में ऐसे कई सारे शास्त्रज्ञ है और पंडित लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो क्योंकि वो संस्कृत भाषा जानते हैं, वो भगवद्गीता लेकर उसके ऊपर टीका लिख देते हैं, अपने मनगढ़ंत ढंग से उसके ऊपर टीका लिखते हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, भगवद्गीता के टीकाएं। सो प्रभुपाद बोलते हैं ये लोग भी भगवद्गीता को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सिर्फ हमें भाषा का ज्ञान का जरूरत नहीं है, हमें एक शुद्ध भक्त के पास जाना चाहिए। बोलते हैं ना बोलो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्तिते ज्ञानम् ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शनम्। एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर उनके मार्गदर्शन में सभी वेद शास्त्र पढ़ना होता है। तो वह भगवद्गीता भी वैसे ही है, लेकिन ये लोग अपने मनोधर्म से मानसिक चिंतन से कुछ न कुछ समझने के लिए कोशिश करते हैं। कोई कोई ऐसा लिखा है कि कुरुक्षेत्र मतलब ये शरीर है, पांच पांडव मतलब पांच इंद्रियां हैं, ऐसे अपने मन गणित दल से उसके ऊपर टीका करते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे लोगों के लिए ये भगवद्गीता है। तो चौथे अध्याय को पहला श्लोक के तात्पर्य तो ये तो वहां पर वो श्लोक है ना, चक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणां, उसको उल्लेख करते हैं। उसके बाद में पैराग्राफ में वहां पर बताया गया, देखिए भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता का विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। गीता इज नॉट एन शो, देयरफॉर इज अ स्पेक्युलेटिव रिसर्च इनसिग्निफिकेंट मंडेन स्कॉलर। यहाँ पर अगर विद्यार्थी लिखा गया है वो शास्त्रज्ञ होना चाहिए, स्कॉलर मतलब शास्त्रज्ञ। तो ये ऐसे मंडेन स्कॉलर्स, ये भौतिकवादी शास्त्रज्ञों के लिए भगवद्गीता नहीं है। और भौतिकवादी शास्त्रज्ञों में और भी कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को आध्यात्मिक मानते हैं लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं है, तो उनको मायावादी कहते हैं। उनके लिए भी भगवद्गीता नहीं है, मायावादी उनके लिए। तो मायावादी का क्या अर्थ होता है बताइए, कोई बताएंगे मायावादी शब्द का क्या अर्थ है? जो भगवान कृष्ण के शरीर को माया से निर्मित है मानता है और भगवान के भक्त माया है, माया में है और भक्ति भी माया है, ऐसे लोग जो कहते हैं उनको मायावादी कहते हैं और उनको दर्शन को मायावाद कहते हैं। विशेष करके शंकराचार्य के अनुयायी हैं वैसे उनको मायावादी कहते हैं। वो लोग भी भगवद्गीता समझ नहीं पाए, उनके लिए भी भगवद्गीता नहीं है। और भक्ति सिद्धांत सच्चे ठाकुर कहा करते थे कि मायावादी लोग जो भगवत गीता को आस्वादन करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, अगर ऐसा है जैसा एक मधुमक्खी वो मधु को चखना चाहता है लेकिन वो देख रहा है मधु है, वो बॉटल के अंदर मधु है लेकिन बाहर से वो चखने के लिए कोशिश कर रहा है, उसके समान वो कभी नहीं समझ पाएंगे। ये भी एक वर्ग है जो भगवत गीता को समझ नहीं पाएंगे, भगवत गीता उनके लिए नहीं। तो दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक निकालिए, उसके बाद करें। ये मायावादी लोग भी भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए वो ये ईर्ष्यालु लोग, ये दोनों वर्ग जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, भौतिकवादी शास्त्रज्ञ और मायावादी, वो ईर्ष्यालु लोगों में आते हैं जो भगवान के प्रति ईर्ष्या करते हैं। वहां पर दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक के तात्पर्य में वहां पर देखिए, जो लोग भगवान कृष्ण को विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेश को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र छाटने के सदृश है। पात्र को खोली बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवद गीता रहस्यास्वाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया। तो न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते है जो भगवान के अस्तित्व को ही विरोध करते, ईर्ष्या में लोग। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानव समग्र सत्य का सरासर भ्रमक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया। वो हमारा मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल। तो भ्रामक निरूपण है वो, जो मायावादी निरूपित करते हैं उसका भ्रामक है, वो सही में जानते नहीं। तो मायावादी लोग भी ना बहुत बड़े बड़े प्रवचन देते हैं भगवदगीता के, लेकिन कभी भी वो समझते नहीं। ठीक है, तो ये सभी लोगों के लिए भगवदगीता नहीं है। और आगे है भगवदगीता किसके लिए है, ये चार वर्गों के लिए नहीं है, तो इसका अर्थ है किसके लिए मिलते की तरह। आर वन मोर कोट इज देयर समवेयर, अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। दैट इज नॉट टेलिंग अबाउट भगवद गीता, इट इज टेलिंग अबाउट कृष्ण। वी आर डिस्कसिंग हु चौथे अध्याय में, तीसरे अध्याय में that is for, so what Krishna is telling, but those who out of envy disregard this thing do not follow them to be considered direct of all matter before you. भगवदगीता को जो स्वीकार नहीं करते हैं उनके लिए क्या होता है, दैट विल गो इन द प्रीवियस सेक्शन। क्यों महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, इस वर्ष विल गो इन द प्रीवियस सेक्शन। ठीक है, ओके। सो आगे हम लोग लेंगे किनके लिए है। दूसरे शब्दों में शिष्य का क्या लक्षण होना चाहिए वो भी हम लोग इसको, या भगवदगीता को अध्ययन करने का जो विद्यार्थी है उसके क्या लक्षण होना चाहिए वो आता है। भगवदगीता किनके लिए है, छोटा पॉइंट। प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि जो लोग जिज्ञासु है उनके लिए भगवदगीता, जिज्ञासा करते हैं, क्या जिज्ञासा करते हैं कि क्यों मैं इस जगत में बहुत सारे दुख पा रहा हूं और मृत्यु के बाद कहां जाऊंगा। तो ये जो ऐसे जिज्ञासा करते हैं उनके लिए भगवदगीता है। जो जिज्ञासु है, शिष्य को जिज्ञासु होना चाहिए ना, प्रश्न पूछना चाहिए, है कि नहीं? हालांकि प्रश्न कैसे होना चाहिए वो प्रश्न है, ऐसे बकवास के प्रश्न नहीं होना चाहिए। उसका एक बार प्रभुपाद जी को पूछा गया था, आप कह रहे हैं कि गुरु परिपूर्ण, गुरु के पास परिपूर्ण ज्ञान है, तो इस अमेरिका में एक बहुत बड़ा इमारत है वो गिर गया तो कुछ साल पहले, 10 साल पहले, तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग करके एक इमारत था। इस व्यक्ति ने पूछा, गुरु के पास परिपूर्ण ज्ञान है, आप ऐसे बोल रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं इस इमारत में कितने सारे खिड़कियां हैं, ऐसे पूछा। तो फिर प्रभुपाद जी उत्तर में बोल रहे, क्या आप बता सकते हैं कि वो फॉग को क्या बोलते हैं, कोहरा में कितने सारे बिंदु हैं, क्या आप बता सकते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी ने वापस पूछा। उसका अर्थ क्या है, जानने से क्या लाभ मिलने वाला है, दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, बकवास का ऐसा प्रश्न है। तो बाद में प्रभुपाद जी पूछ बोला कि एक दिन ये जो बिल्डिंग है गिर से गिर जाने वाला है, आप इतने सारे खिड़की गिन लिया लेकिन खिड़की एक दिन गिरने वाला है, उसने क्या लेने वाला है, उसको काउंट करके उसमें बॉम्ब डाल गया है ना कुछ, 2002 जानता है ना वो ईमान जाके वो क्रैश हो गया दूसरा बिल्डिंग में, दो बिल्डिंग ऐसे गिर गए। एनीवे ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए कि क्यों मैं ये सारे कष्ट मुझे मेरे ऊपर डाले जा रहा है, भेजे जा रहा है, और मेरा मृत्यु के बाद कहाँ जाऊँगा, तो ये सब प्रश्न पूछने चाहिए। भगवदगीता के जो भूमिका है वो खोली, वहाँ पर आरंभ के कुछ वो एक श्लोक उल्लेख किया गया ना, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान्। तो उसको छोड़कर एक अगला जो पढ़ने पर गए, अगले पढ़ने पर वहां पर भगवदगीता क्या है बोलते, एक पैराग्राफ शुरू होता है ना भगवदगीता क्या है, पर्पज ऑफ भगवदगीता बताया, उसको भी छोड़िए और उसके अगले पैराग्राफ को भी छोड़िए, फिर उसके बाद में या उसके अगले पैराग्राफ में वहां पर बताया गया वो श्लोक है ना, अतः ब्रह्म जिज्ञासा, विशेष करके हम लोग हमें ये चाहिए अभी जो शुरू होगा वाक्य वहां से, अतएव जो
कहा से आया, मृत्यु के बाद
तो ये विद्यार्थी है और ये जो अगला वाक्य है निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसे ही विद्यार्थी का वो भी है। फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज दैट दे शुड बी जिज्ञासु, वो जिज्ञासु होना चाहिए। पहला लक्षण है विद्यार्थी का भगवद्गीता का, उनको जिज्ञासु होना चाहिए। अभी आप लोग अभी एक महीने तक हम लोग भगवद्गीता को अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन जिज्ञासा नहीं करेंगे तो आप योग्य विद्यार्थी नहीं है। शायद मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कम से कम आप तो जिज्ञासा तो करनी चाहिए। तो समझ आतुरता वो क्यों जिज्ञासा करना चाहिए, क्योंकि वो समझने के लिए आतुरता का लक्षण है। मैं ये समझना चाहता हूँ, ऐसे आतुरता का लक्षण है। और दूसरा चीज है निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भगवान के ये जो गीता पढ़ रहे हैं उनको आदर नहीं है तो कैसे हम लोग उसको उनको समझ सकेंगे, ठीक है ना। आदर भावना होना चाहिए, ये दूसरा लक्षण है विद्यार्थी का। अर्जुन ऐसे ही विद्यार्थी का। और आगे का पैराग्राफ भी पढ़िए, वो पहला पॉइंट से कनेक्टेड है। इसका अर्थ है कि ऐसे जिज्ञासा करना अपने कष्टों के बारे में, मृत्यु के बाद क्या होता है, मैं कहाँ जाऊंगा, तो ये समझाने के लिए भी भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं। ये मनुष्य का उद्देश्य क्या है वो जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। तो भगवत गीता उसके लिए है जो मनुष्य के जीवन के उद्देश्य क्या है, क्यों मेरे कष्ट आ रहे हैं, ऐसे जो जिज्ञास करते हैं और उनके लिए भगवत गीता। ओके बस अभी दो लक्षण हम लोगों ने चर्चा किया, तो तीसरा है प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक और कोट हम लोग बोले करेंगे छोटे अध्याय पर 42वां श्लोक बोलिए। तो वहां पर तात्पर्य में क्या लिखते हैं, इग्नोरेंस कैन बी रिमूव्ड। You are getting it? Somebody is... So, where is that? Ignorance is removed.
कृष्ण धारणा के सिद्धांत
भगवदगीता का अगर कौन असली विद्यार्थी है इसके बारे में यहाँ पर वर्णन आया है। तो हम लोग पहले पॉइंट में चर्चा कर रहे थे कि जिज्ञासु होना चाहिए और यहाँ पर ये सभी यज्ञों के बारे में वर्णन किया गया। लेकिन आधार क्या है इन सभी नियमों का, यज्ञों का? नियमित कर्म पर आधारित है, रेगुलेशन। तो जब हम लोग मनुष्य जीवन का महत्व को जान चर्चा करते हैं, विशेष करके हम लोग दो पॉइंट पर चर्चा करते हैं। मनुष्य जीवन का क्या महत्व है बताइए, बताइए विशेषता क्या है मनुष्य जीवन का? जिज्ञासु होना चाहिए। आपको सफलता कहां पर बताया गया है? जिज्ञासु आत्म साक्षात्कार के बारे में जिज्ञासु करते हैं हम लोग। मनुष्य और पशुओं में क्या समानता है और क्या विशेषता है मनुष्यों में? आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मेतत पशु भी नराणाम धर्मो ही देशा अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान। तो धर्म क्या है? विशेषता है मनुष्यों का। और धर्म का अर्थ क्या है बताइए इसमें, इस श्लोक में ये श्लोक हितोपदेश से है ना? धर्म शब्द का क्या अर्थ है? इस श्लोक में धर्म शब्द का अर्थ है नियमित, नियमित रहना, नियमित होना, आहार निद्रा भय मैथुन को नियमित रूप से करना उसको। सो मैथुन को कैसे नियमित किया जाता है बताइए? विवाह कर। विवाह क्या है वो? संस्कार किसमें आते हैं? पहले अध्याय के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं ना वर्ण संकर, जब चर्चा होगी वर्णाश्रम। धर्म शब्द का अर्थ है वर्णाश्रम। तो वर्णाश्रम धर्म को पालन करने से ये सब नियमित हो जाते हैं, यही यहाँ पर बताया गया है ना। आप पढ़ रहे कि नहीं? कृष्ण भावनामृत सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान के क्रमशः दूर किया जा सकता है, ग्रेजुअली, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। यहाँ कृष्ण भावनामृत विविध वेद यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचार्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, ये सब ब्रह्मचार्य गृहस्थ देवों का उपासना करने, ये सब किसमें आते हैं? वर्णाश्रम, है ना। इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधन यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, वर्णाश्रम धर्म के भाव में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है, ये सब यज्ञ कहलाते हैं। और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है, रेगुलेशन, जो मैं बता रहा था धर्म का अर्थ है नियमित कर्म। यहाँ पर वो शब्द भी बताया ना, रेगुलेशन, तो वही अर्थ है। तो जब नियमित करेंगे तब जाकर हम लोग आत्म साक्षात्कार के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं। जब तक ये अनियमित रूप से आहार निद्रा भय मैथुन चल रहा है तब आत्म साक्षात्कार का वो बात ही नहीं होता, वो विषय ही नहीं आएगा। इसलिए शिल प्रभुपाद कहा करते थे मनुष्य जीवन का आरंभ कैसे वो आरंभ होता है, मनुष्य सभ्यता आरंभ वर्णाश्रम धर्म से आरंभ होता है, तब जाकर आप जिज्ञासा करेंगे। तो ये विशेषता है मनुष्य, ये दोनों विशेषता। तो भगवदगीता समझने के लिए भी ये दोनों विशेषता की जरूरत है, ये दोनों होना चाहिए कि एक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए। लेकिन सार क्या है इसका, ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियम पर आधारित है, किंतु इन सभी कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो आत्म साक्षात्कार को जानना चाहते हैं तो उनके लिए भगवद गीता है। तो ये पहला पॉइंट के लिए एक और उल्लेख है, एक और कोट है, एक्स्ट्रा कोट, ठीक है। तो ये सभी हम लोगों को लिख लेना चाहिए, कहाँ पर ये बता रहे हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये पहला पॉइंट के लिए एक और कोट है, तो चौथे अध्याय का 42वां श्लोक के तात्पर्य, कृष्ण भवनामृत के सिद्धांतों को ऐसे शुरू होता है, ये सब लिख लीजिए आप, ठीक है। वर्णाश्रम पालन करना और जिज्ञासा करना, आत्म साक्षात्कार के बारे में जिज्ञासा करना, ये मनुष्य जीवन का विशेषता है। ये नहीं है तो पशु जीवन है। और भगवद्गीता समझने के लिए भी ऐसे ही नियमित होना चाहिए और आत्म साक्षात्कार के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। तो दो हो गए, और तीसरा और क्या लक्षण होना चाहिए भगवद गीता का, जो विद्यार्थी को भगवान की अर्जुन को क्या बोलते हैं, मैं किसके लिए आपको बता रहा हूँ ये भगवद गीता, भक्तो सुनी सका चे भी रहस्यम ये जरूर, भगवान का भक्त होना चाहिए। अभक्तों को भगवद गीता नहीं बोलना चाहिए और वो समझ नहीं पाएंगे, वो अयोग्यता है। लेकिन योग्यता क्या है, भगवान के भक्त होना चाहिए। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमभयं विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्षा कवे कवि एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदु सकाले मे माता योगो नष्टत्वं तपा सैवाय मया तेत्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तोऽसि सखा चेति रहस्यम् एतदुक्तम्। हमें ऐसे भक्त होना चाहिए जो अर्जुन जैसे भक्त होना चाहिए। वो अर्जुन कैसे भक्त थे, वो भगवान के शुद्ध भक्त थे और उनके मित्र थे वो। और पर वहां पर वर्णन करते हैं कि भगवान के साथ अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं। तो शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, सत्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, इन सभी संबंधों में हमारा एक संबंध होना चाहिए। तो ऐसे भक्त को ही भगवद गीता बताया जाता है। अभी हम लोग तो मैं तो पता नहीं है क्या संबंध है हमारा भगवद गीता से। तो अभी हमारा कैसे भक्ति है, गुरु दास्य तो वो परिपूर्णता प्राप्त की थी है, गुरु के दास्य, गुरु दास ये हमारा रस है। तो ऐसे जो गुण होते हैं उनके लिए ये भगवद गीता है। तो इसके लिए बहुत सारे उल्लेख मिलेंगे भगवद गीता में। वो भूमिका को लिए वहाँ पर प्रभुपाद जी इसको विस्तार से वर्णन करते हैं, वहाँ पर ये सभी श्लोकों को उल्लेख किया है ना प्रभुपाद जी ने, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमभयं। अर्जुन जैसे वो लिखिए आप तीसरा, जो भगवद गीता के विद्यार्थी को अर्जुन जैसे भक्त होना चाहिए। और उसको पढ़ी है अभी, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमभयं। पढ़िए उसको, से दूसरे के विद्यार्थी को अर्जुन जैसे भक्त होना चाहिए, अभी ये हम लोग समझ सकते हैं। इन्हीं श्लोकों में जो यहाँ पर प्रभुपाद उल्लेख कर रहे हैं, इन्हीं श्लोकों में एक और चीज हमें प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं कि मैं ये विवस्वान को दिया था, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि ऐसे राज ऋषियों ने इसको समझ लिया परंपरा में। इसका अर्थ क्या है? ये भगवद गीता राज ऋषियों के लिए है, ये चौथा लक्षण है। भगवद गीता के विद्यार्थी वो राज ऋषि होना चाहिए, राजर्षि होना चाहिए, या राजर्षियों के लिए ये भगवद गीता है चौथा। तो राज ऋषियों के लिए छोटे अध्याय के पहला श्लोक के तात्पर्य बोलिए। श्रील प्रभुपाद वहां पर वर्णन करते हैं कि क्यों भगवान कृष्ण या राज ऋषियों को ये भगवद गीता सुनाई। या तात्पर्य के दूसरे या तीसरे वाक्यों से समस्त लोगों के राजा ललित कृष्ण को बड़ी
समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राज्य में वर्ग को भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सकें।
हाँ, पिछले श्लोक पिछले अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण काम के बारे में वर्णन किए। अर्जुन प्रश्न पूछे थे ना कि क्या है चीज वो मुझे बाध्य करता है, ऐसे पाप मेरे इच्छा ना होने पर भी ऐसे पाप करने के लिए बाध्य करता है। तो भगवान ने क्या बताया, काम ये शुक्रोदयेशु रजोगुण समुद्र महाशुम महापापमा विद्ये नमीना। और ऐसे वो कैसे अग्नि के समान भड़कता है, आवृतम ज्ञान ज्ञानी नित्य वैरी न काम रूपे न पौते दुष्पुरे नरे न, ये सब चीज भगवान वर्णन करते थे। तो अभी फिर छोटे अध्याय आरंभ करते हैं, वो बताते हैं कि मैं विवस्वान को ये ज्ञान प्रदान किया था। प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि ये काम रूपी भव बंधन से बचाने के लिए लोगों को ना ये ज्ञान भगवान राज ऋषि को देते हैं। इसका अर्थ है कि जो राज ऋषि है सभी जनता को या प्रजा को क्या करना चाहिए, वो धार्मिक नियमों में धर्म में लगाना चाहिए। वो देखना कि सभी लोग धर्म को पालन कर रहे हैं कि नहीं, आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं कि नहीं, भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, वो देखना चाहिए। आजकल जो नेता लोग क्या है, वो लोग धर्म निरपेक्ष सेक्युलरिज्म कहते हैं ना, धर्म निरपेक्षता के नाम पर सभी प्रजा को पशु के समान वो रख रहे या सभी प्रजा को तो नरक की ओर लेके जाते हैं, भव बंधन में लेके जाते हैं। तो बढ़िया है,
जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शास्त्रावृक्षों को चाहिए कि शिक्षा संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को ये पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शास्त्रावृक्ष कृष्ण महात्मा पर विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण।
आप जानते हैं ना, श्रील प्रभुपाद जी भी अपने प्रचार में कई सारे ऐसे नेताओं को राज्य अध्यक्षों को मिले, वो उनको प्रचार किए हो। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि दिल्ली में ऐसे सभी राजनेताओं को ये सब भगवद गीता का प्रचार होना चाहिए। वो इंदिरा गांधी से भी उन्होंने मिला था, कई सारे उन्होंने दिया ना आदर उपदेश दिया उनको कि सभी जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं सुबह शाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवदगीता पढ़ना चाहिए, ये सब प्रभुपाद जी प्रचार किया क्योंकि उनके लिए ताकि वो लोग और सभी प्रजा को सही मार्गदर्शन दर्शन दे सके। तो राज ऋषि होना चाहिए वो लोग, लेकिन ऐसे तथाकथित नेता लोग तो ये समझेंगे नहीं, तो राज ऋषि होना चाहिए। और इससे ही कनेक्टेड एक और है कि ये राज ऋषि कौन है, वो वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं, वो भगवान के भक्त है। इसका अर्थ है पांचवा, चार हुए ना अभी, चार लक्षण, पांचवा लक्षण है जो भगवद गीता समझने वाले वर्णाश्रम धर्म को पालन करना चाहिए या जो वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं वही भगवद गीता को समझ सकते हैं। इसलिए अर्जुन को दे रहे हो, अर्जुन वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं, है ना। अर्जुन का एक और लक्षण है कि वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं, वो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो राज ऋषि है और वो वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं। तो सातवें अध्याय चौथे अध्याय का ही सातवें श्लोक खोले, यदा यदा ही कर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानाम सृजाम्यहम्। तो उसके तात्पर्य अंतिम पैराग्राफ, तात्पर्य के अंतिम तक पैराग्राफ, भगवद्गीता के सिद्धांत अर्जुन से खये गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते हैं, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भावों से, अन्य भावों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक थे। The principles of Bhagavad-gita were spoken to Arjuna and for that matter to the other highly elevated persons because he was highly advanced compared to ordinary persons in other parts of the world. इसका अर्थ क्या है कि अन्य दूसरे जगह भारत को छोड़कर बाहर लोग क्या है, वो म्लच्छ यवन पतित है, वर्णाश्रम धर्म से दूर है वो लोग, तो उनके लिए वो प्रगतिशील नहीं है वो लोग, they are not civilized people, uncivilized people. तो सिविलाइज शब्द का अर्थ है जो वर्णाश्रम धर्म को जो पालन करते हैं, उनको आर्य शब्द, आर्य आर्य वर्ग कहते हैं, आर्यन सिविलाइजेशन, तो आर्य कहते हैं, अनार्य जिष्टम, वो आर्य शब्द आता है दूसरे अध्याय में भी। तो इसलिए भगवद्गीता आर्यों के लिए है जो वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं, उनके लिए भगवद्गीता है, ये पांचवा लक्षण। तो जो वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं वही भगवद्गीता को समझ सकते हैं। अब बोले इस्कॉन में भी हम लोग वर्णाश्रम धर्म को स्थापना नहीं करेंगे तो हम लोग भगवद्गीता अध्ययन करने के लिए भी योग्य नहीं है, तो वी आर नॉट फिट टू स्टडी इवन अंडरस्टैंड भगवद्गीता आल्सो। राइट, सी हियर व्हाट प्रॉपर स्टडी, द प्रिंसिपल्स ऑफ भगवद्गीता स्पोकन टू अर्जुन एंड फॉर दैट मैटर टू अदर हाईली एलिवेटेड पर्सन बिकॉज ही वॉज हाईली एडवांस्ड कंपेयर टू ऑर्डिनरी पर्सन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए भगवद्गीता में जब भगवान कहते हैं यदा यदा ही कर्मस्य, मैं धर्म को स्थापना करने के लिए आ रहा हूँ, इसका अर्थ है वो वर्णाश्रम धर्म को स्थापना करने के लिए आ रहे हैं। तो उनके लिए भगवद्गीता में है, वो धार्मिक वर्णाश्रम धर्म के नियम सभी क्या है, भगवद्गीता में दिए गए। तो ये पांच लक्षण होना चाहिए जो भगवद्गीता को अध्ययन करने वाले हैं। और अभी हम लोगों ने देखा किनके लिए नहीं है भगवद्गीता और किसके लिए है ये, और भगवद्गीता समझने के लिए उस विद्यार्थी का क्या क्या लक्षण होना चाहिए, लेकिन अंत में भगवद्गीता सबके लिए है, सभी जीवों के लिए है ना, ये योग्यता होना चाहिए और वो अयोग्यता से हमें मुक्त होना चाहिए, लेकिन अंत में भगवद्गीता सबके लिए है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, जैसे लोग बोलते हैं ना ये हिंदू ग्रंथ है, ऐसे बोलते हैं, ये सेक्टेरियन नहीं है भगवद्गीता, कोई मत 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 के लिए नहीं है, तो ये सबके लिए है। तो श्रील प्रभुपाद इसलिए भगवद्गीता यहाँ पर वर्णन आता है भगवद्गीता में, दोनों जो पक्ष थे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में, उन दोनों पक्ष के बीच में ये भगवद्गीता सुनाई दी। क्यों ऐसे दोनों बीच के, दोनों पक्षों के बीच में ये भगवद्गीता सुनाई गई ताकि दूसरे लोग भी सुने इसको और वो भी लाभान्वित हो जाए। इसका अर्थ क्या है, ये सबके लिए। तो इसको कैसे समझना चाहिए, भक्ति रसामृत संधु में भी रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं भक्ति करने के लिए योग्यता क्या है, वो श्रद्धा होना चाहिए उसके अंदर, और उसको वो आसक्ति और अनासक्ति से दोनों से भी अति आसक्ति और अति अनासक्ति से दोनों से भी मुक्त होना चाहिए, ये योग्यता है। इसका अर्थ है अति आसक्ति मतलब भौतिक भोग में, पाप कर्मों में व्यभिचार करना, मांस भक्षण करना, उसमें लगे रहते हैं, वो अति आसक्ति है। अति अनासक्ति मतलब क्या है, वो ज्ञानी बन जाता है। सो सब नकार देना भौतिक जगत को, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी भक्ति ना मुमुक्षु भी परित्याग हो फलगु वैराग्य, तो वो योग्यता नहीं है। ठीक है, श्रद्धा होना चाहिए और अति आसक्ति और अनासक्ति से मुक्त होना चाहिए, ये योग्यता है भक्ति के लिए और भक्ति में प्रवेश करने के लिए। और दूसरा है तो और रूप गोस्वामी कहते हैं भोग और त्याग से मुक्त होना चाहिए। ये भोग और त्याग क्या है, क्या है भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची रविवर्तते। जब तक ये पिशाची भुक्ति भुक्ति और मुक्ति नाम का पिशाची हृदय में है वो एक व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाएगा, भक्ति का जो रस है उसको आस्वादन है, ये अयोग्यता है। योग्यता क्या है, श्रद्धा के साथ साथ अति आसक्ति और अनासक्ति से मुक्त होना चाहिए। और अयोग्यता क्या है, भुक्ति और मुक्ति की जो इच्छा है उससे मुक्त रहना चाहिए। और बाद में है रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं हालांकि ये सभी है योग्यता और अयोग्यता, लेकिन अंत में भक्ति सबके लिए, क्योंकि सभी जीव भगवान के अंश है। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या चर्चा किए, किनके लिए भगवद गीता नहीं है और किनके लिए भगवद गीता है, लेकिन अंत में ये भगवद गीता सबके लिए, इसलिए भगवद गीता दोनों पक्ष के बीच में बताया गया है। तो वो दूसरे अध्याय के या वहां पर देखे तम्बुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत सेनयोर्वयोर्मध्ये विशिगन्धं इदं वचः। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। यहाँ पर सेनयोर उभयोर्मध्ये विशिगन्धं इदं वचः, जो दोनों सेनाओं के बीच में ये वचः भगवान ने ये शब्द कहे, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में है अंत में देखिए, तो वो कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य के यह वार्ता दोनों सेनाओं के उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। क्यों ये दोनों सेनाओं के बीच में क्यों ये बता रहा है भगवान, ताकि सभी लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति समाज या जाति के लिए नहीं अभी तो सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है, सबके लिए है। ये धृतराष्ट्र को भी दिया गया था, दुर्योधन को भी दिया गया था, सबको लिए सुनाया गया था, लेकिन उनके योग्यता के अनुसार वो लोग समझेंगे और स्वीकार करेंगे, लेकिन भगवद गीता सबके लिए दिया गया था। कभी कभी लोग पूछते हैं जब आप वितरण करते हैं, हम मुसलमान हैं, लोग बोलेंगे नहीं ये सबके लिए, मुसलमानों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है, सबके लिए है। जब प्रभुपाद जी भारत में पहली बार अपने शिष्यों को लेकर आए थे, ये सभी भारत में कई सारे लोग तथाकथित जो ब्राह्मण लोग वगैरह, उन्होंने ये लोग कैसे भगवद गीता पढ़ सकते थे, ये जो शूद्र म्लच्छ यवन है वो कैसे भगवद गीता पढ़ सकते हैं, वो ऐसे बहुत वाद विवाद करते थे। लेकिन यहाँ पर दोनों सेनाओं के बीच में भगवद गीता कहा जा रहा है, ये सबके लिए है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर रुकेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न पूछता चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लोग जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, टाइम हो गया। इस तात्पर्य के अनुसार सबने सुना, लेकिन हाँ लेकिन जरूरी नहीं कि सबके लिए एक ही फल मिलेगा, वो हम लोग चर्चा करेंगे। रिजल्ट ऑफ भगवद गीता, भगवद गीता पढ़ने का या श्रवण करने का फल, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, वहां पर इसको हम लोग चर्चा करेंगे। धृतराष्ट्र को भी ये सुनाया गया था ना भगवद गीता, लेकिन फिर भी वो उनका उनको चेतना जागृत नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं कि सबके लिए, सुनते हैं बहुत सारे लोग लेकिन जरूरी नहीं कि सबको ये भी कर ले। क्यों नहीं जान से आपका आवाज नहीं जाता, नहीं जाता इसका अर्थ ये नहीं कि कृष्ण का आवाज नहीं। सेनयोर उपयोगते विशिदंतम इदं वचः, ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य के यह वार्ता दोनों सेनाओं के उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। वो सुने बिना कैसे लाभान्वित होंगे, है ना, वो सुन रहे थे। वो कैसे समझना चाहिए उसको, हम लोगों को ऐसे अर्ध कुकुट न्याय जैसे उसको लेना नहीं चाहिए। वो आगे आएगा, नेक्स्ट सेक्शन इज हाउ टू अंडरस्टैंड भगवद गीता, देयर इट विल कम। वी शुड नॉट टेक समथिंग एंड रिजेक्ट समथिंग। जो अच्छा लगता है ऐसे लेंगे, ऐसा नहीं, सब कुछ ले। हाउ टू अंडरस्टैंड, कैसे समझना चाहिए। अभी हम लोग कौन समझने वाले हैं उनके बारे में, विद्यार्थी के क्या लक्षण है। मतलब योग्यता भी होना चाहिए ना, जैसे दूसरे अध्याय दूसरे श्लोक में वो बताते हैं, वो कौन द्रोण इतना उदार थे, पश्यताम पांडवपुत्राणाम आचार्य, तीसरा श्लोक, पश्यताम पांडवपुत्राणाम आचार्य महितिंचम यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। जो दुर्योधन अपने राजनीतिज्ञ जो बुद्धि है उससे वो द्रोण को उनकी जो गलती है वो समझा रहा है। देखो आपने ये दृष्टद्युम्न को ये सभी सिखा दिया, हालांकि आप उनका दृष्टद्युम्न का जन्म किसके लिए हुआ है, द्रोण को हत्या करने के लिए हुआ, फिर भी जब दृष्टद्युम्न उनके पास आए भगवद्गीता मतलब ये धनुर्विद्या को समझने के लिए, वो अपने उदार भावना से उदार हृदय से उनको सिखा दिया, और अभी हमारे लिए भी वो बाधक बन गए, ऐसे दुर्योधन बताते हैं ये आपका गलती है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, तो ब्राह्मण कैसे होना चाहिए, उदार होना चाहिए और सबके लिए ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो सबके लिए ध्यान देने के लिए तैयार है, लेकिन वो व्यक्ति तैयार है क्या लेने के लिए, नहीं है, उसके लिए योग्यता की जरूरत होता है, ठीक है। वो दुर्योधन को भी वो सिखा सकते थे अर्जुन जैसे, लेकिन दुर्योधन योग्य नहीं था, ठीक है, तो इसलिए योग्यता का जरूरत होता है, क्या लक्षण होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए, कौन उसको समझ सकते हैं, किनके लिए है। तो इसलिए वो सब प्रशिक्षण देना चाहिए, पहले जमाने में वो प्रशिक्षण दिया जाता था गुरुकुल में वगैरह, तो ऐसे प्रशिक्षण देना चाहिए लोगों को, इसलिए हम प्रचार करते हैं ना। और हम लोग भी जब भगवद गीता अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ये सब होना चाहिए, महान भक्त है। जैसे श्रील प्रभुपाद भी कहा करते थे, मैं सबके लिए ये बता रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबके लिए प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भेदभाव कर रहा हूँ, लेकिन वही लोग जिनके पास योग्यता है वो लोग।
तो
कब पॉइंट मैं भूल गया हूँ भूमि में उनको छोड़ देते हैं, जो बहुत ही ज्यादा घायल है उनको छोड़ देते, थोड़ा बहुत घायल है उनको लेकर आकर ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि वो, क्योंकि वो ज्यादा घायल है वो अभी मरने वाले हैं उनको क्या ट्रीटमेंट देते हैं। एक और पॉइंट है योग्यता में, वो दोज आर इनोसेंट, जो मासूम लोग हैं जो ईर्ष्या नहीं करते भगवान के प्रति, लेकिन वो अज्ञानी है, मासूम है, उनके लिए भी भगवद गीता बोलनी चाहिए। सो 71 टेक्स्ट नंबर 1871 71 18वें अध्याय के 71 वो मैं बोल रहा हूं। तो वो पढ़िए वहां पर अल्लाह बताते हैं 60 इन द 67th वर्स ऑफ दिस चैप्टर। सुन रहे हैं, सुन रहे सब लोग,
तो फिर कैसे लोग पूरी कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति मुक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं करते, उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे भी प्रोग्राम के बारे में किसी प्रमाण मंत्र से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं, और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं ब्रह्म में आत्माएं वास करते हैं। अतः भगवद गीता के सर्व मंत्र से ऐसे व्यक्ति को भी पूर्ण परमात्मा प्राप्त हो जाता है, जो अपने को शुद्ध भक्ति बनाने का प्रयत्न नहीं करते। इस प्रकार भगवद गीता हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्राप्त बनाया गया है।
बस तो ये लिखना चाहिए, छठा ना, ये छठा या सातवा, छठा। जो मासूम लोग हैं, जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं लेकिन मासूम है, आज्ञा है, और वो सबके लिए है। उसमें एक और पॉइंट है, भगवद गीता अर्जुन के लिए जरूरत नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी अर्जुन क्या है, वो भगवद गीता के परिपूर्णता में स्थित है, भक्तों सीमी सकाते थे, भगवान के वो भक्त बन गए, शुद्ध भक्त बन गए, उनके उनके रस में स्थित है। तो लेकिन अर्जुन को ऐसे भ्रम में डालकर उनको ऐसे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करके आज भगवान कृष्ण ये भगवद गीता पूरा दुनिया को दे दिया। तो बेसिकली भगवद गीता सभी ये बद्ध जीवों के लिए है, मुक्त जीवों के लिए नहीं, जैसे अर्जुन जैसे जो ऑलरेडी भगवान के रस में स्थित है। ये इसके लिए प्रमाण चौपा जी इसका वर्णन है 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के तात्पर्य में लेते हैं, हम उसको पढ़ेंगे नहीं, आप बाद में ढूंढ लीजिए इसको। 11वें अध्याय के 55 श्लोक के तात्पर्य में लेते हैं, ठीक है। तो और कुछ प्रश्न टीका टिप्पणी पूछना चाहते हैं? ऑलरेडी दे हैव अटेंड द परफेक्शन ऑफ द गुरु, ठीक है। और कोई प्रश्न?
जितने महापुरुष
तो भगवान के बारे में शाम कीर्तन करते हैं, ठीक है। जनरली भगवद गीता क्या है, प्रिलिमिनरी स्टडी है, इट एस्टैब्लिशेस हु इज गॉड, हु इज अदर, कौन परम सत्य, भगवान कृष्ण की परम सत्य, ऐसे वो प्रस्तुत कर रहे हैं। वो ऑलरेडी वो भगवान के संबंध में है, उनके लिए ये जाना परम सत्य वो कौन है करके जरूरत नहीं है ना, ऑलरेडी वो भगवान के साथ में है। चैतन्य महाप्रभु वो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं भगवान के बारे में, दैट इज भागवतम, भगवदगीता। और क्या है, चैतन्य महाप्रभु हमारे उदाहरण स्थापन करने के लिए वो भी भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं, लेकिन भगवान के लीलाओं के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं और उनके भक्तों के बारे में, बट दिस इज एबीसीडी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, दिस इज प्रिलिमिनरी स्टडी, फॉर देम इट इज नॉट रिक्वायर्ड, दे मे डू दैट, जरूरत नहीं है ना। भागवतम में ऐसे निवृत्त तर्षे उपगीयमान बहुशदाश्रुत मनोविराम, वहाँ पर तीन और वर्गों का वर्णन है। निवृत्त तर्षे जो बहुत ही भौतिक प्रश्न से मुक्त है, और बहुशदा जो साधक है वो औषध ले रहे हैं, बहुबंधन से मुक्त होना चाहते थे। मनोविराम मतलब बहुत प्रभुपाद कहते हैं कि जो ऐसे स्त्री पुरुष के लीलाओं में, लीला विघ्न के कार्यों में वो लोग रुचि रखते हैं, वो लोग भी इसे इसको सुन सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर भगवान कृष्ण के गोपियों के लीलाएं हैं, इसको सुनने से वो लोग भी मनोविराम प्रसन्न हो गए। तीन वर्गों के कृष्ण लीला, रसिका बुद्धिमान, रसिका बुद्धिमान लोग को आस्वादन कीजिए, जो रस को आस्वादन करना चाहते हैं। और कुछ इंट्रोडक्शन ऑल्सो वी आर रीडिंग फॉर दैट पर्पस, देयर ऑल्सो इट इज प्रॉपर एज क्लियर, इट इज नॉट मेंट फॉर अर्जुन, दैट इज क्लियर, यू कैन नोट डाउन दैट एज just we had not that purpose jidnyasu hona chahiye just after that padhiye usko to jidnyasu hona chahiye iske paragraph hai na wo hone ke baad
जीवन की समस्याओं के विषय पर इससे भगवान के जीवन के
दूसरों के लिए अर्जुन के लिए जरूरत नहीं था भगवान की, हम सबके लिए पूरा दुनिया के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सो वी शुड हैव सम बोर्ड ऑफ सम राइट नाउ, दिस विल बी सफिशिएंट, सो वी शुड हैव सम मोर, वन मोर बोर्ड और व्हाट, राइट to write all these things. So, do that. Do the next thing. Now what is the program? The Sartre program?
People want to see also a bigger screen.
What do you want to do?
That will be too much.
Who will type now?
Who will type now? Who will type? That's why I told you to note down later. We can engage someone to type all these things. That will be for next person. Who will type all those purpose and all this? You all bother me to type.
People
will
write both.
Then we get this. Whatever
they
write,
we can type
Hindi typing.
Hindi point is that
you will be able to do that.
You can try one day.
So we don't make it so complicated.
This is going fine.
In Word, we have this software in Word.
But I want.
Put all one thirty, you know, stay, ask me, it's like this, I left, Madhapur left.